दृष्टि से प्रारंभ करें कि तुलसी ने श्री राम के स्वरूप को किस प्रकार हमारे समक्ष रखा है। यह चर्चा करने से पूर्व हम लोग आइए थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लें, उस परंपरा का पालन कर लें जो रामचरित मानस की परंपरा का एक अनिवार्य। जैसा मैं कह रहा था, तुलसी के राम इस विषय को चर्चा का आधार बनाएंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि तुलसी ने किन रंगों में भगवान श्री राम की छवि को अंकित किया है। श्री राम की कथा हमारे देश के लिए बहुत पुरानी है और श्री राम की कथा ने हम भारतवासियों को भिन्न भिन्न प्रकार से जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रेरणा दी है। जिस किसी दृष्टिकोण से उनके जीवन को देखें, आदर्श उपस्थित होता है और तुलसी ने अपनी जिस सूक्ष्म तुलिका से इस चरित्र का अंकन किया है वह अपने आप में अत्यंत महनीय और अतुलनीय है। और क्या केवल अपना ही देश, बाहर के देशों में भी रामचरित्र का प्रभाव बहुत प्राचीन है। इंडोनेशिया में, मलय में, बैंकॉक में हम अभी भी रामचरित्र का अभिनय पाते हैं। भले ही वहां का राजा इस्लाम धर्म का अनुयायी है पर उसकी अपनी पदवी राम है। राम को वे नहीं छोड़ पाए हैं। वहां के जीवन में भगवान श्री राम की लीलाएं मानो भिड़ गई हैं। भले ही भिन्न धर्म का स्वीकरण वे करते हैं परंतु अपनी विरासत को भी छोड़ नहीं पाए। बाली में, सुमात्रा में, जावा में, यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार से श्री राम की लीलाओं का वर्णन और गायन अभी भी किया जाता है। और भारत में भी कितनी राम कथाएं प्रचलित हैं। जिस कवि ने समाज को कुछ देना चाहा उसने श्री राम को अपने साहित्य का, अपने काव्य का विषय बनाया और श्री राम के माध्यम से उसने अपनी बात समाज तक पहुंचानी चाहिए। आदि गायक इस राम कथा के हैं महर्षि वाल्मीकि। आप सभी जानते हैं उन्होंने जो राम कथा लिखी उसका नाम उन्होंने रामायण दिया और उसी को आधारभूत और प्रामाणिक राम कथा मानी जाती है। जितने भी राम कथा के गायक हमारे देश में हुए उन सभी ने अपनी राम कथा का ताना और बाना वाल्मीकि की राम कथा से लिया है और फिर उसके बाद उन्होंने अपने भाव के अनुसार अपनी ओर से कुछ जोड़ा है। जैसे हम पाते हैं दक्षिण में कंब की राम कथा बहुत प्रचलित है, बंगाल में, उड़ीसा में कृतिवास की रामायण प्रचलित है। ठीक इसी प्रकार हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलसी का यह रामचरितमानस प्रचलित है। अब इतनी कथाएं हमें प्राप्त होती हैं भगवान श्री राम की। और जैसा मैंने कहा कि मूलभूत आधार ग्रंथ जो है वह है वाल्मीकि की राम कथा। प्रश्न उठता है कि इतनी सब राम कथाओं के होते हुए भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नई राम कथा क्यों लिखी? आप यह जानते हैं कि जब तक साहित्यकार के पास या कवि के पास समाज को देने के लिए कुछ नया नहीं रहता तब तक वह सर्जना नहीं करता। वह कुछ नया रचता है समाज को कुछ नया देने के लिए। और इसी दृष्टि से भिन्न भिन्न कवियों ने राम कथा की रचना की है। तो ये जो चार दिन हम तुलसी के राम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं हम यही देखने का प्रयास करेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वह कौन सी अभिनव बात राम कथा के साथ जोड़ी है जिसके कारण उनकी राम कथा अतुलनीय हो गई है। इसे हम देखने की चेष्टा करेंगे। एक बात जो तुलसी के साहित्य पर, तुलसी की राम कथा पर आपत्ति करते हुए कही जाती है वह यह है कि तुलसी की राम कथा प्रामाणिक नहीं है। जो साहित्यकार हैं वे इस बात को अधिक अच्छी तरह समझ सकते हैं। उनका ऐसा कहना है कि वाल्मीकि की राम कथा तो प्रामाणिक है परंतु तुलसी की जो राम कथा है उसमें प्रामाणिकता नहीं है। क्योंकि वे आक्षेप करते हैं कि तुलसी ने भिन्न भिन्न प्रसंगों को अपनी रामकथा में जोड़ दिया है, जो प्रसंग अन्य किसी रामकथा में नहीं मिलते। वाल्मीकि की रामकथा में जो प्रसंग नहीं हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग तुलसी ने अपनी रामकथा में जोड़े हैं, यह तो सत्य है। तो क्या इसीलिए तुलसी की रामकथा प्रामाणिक न मानी जाए? यह प्रश्न हमारे समक्ष उपस्थित होता है। इस प्रश्न की भी मीमांसा आपके समक्ष करने का प्रयास किया जाएगा। और जो दूसरी बात है वह यह है कि कुछ जो हैं समालोचक, ऐसा कि तुलसी को रामकथा लिखनी थी तो उन्होंने भाषा में रामकथा क्यों लिखी, हिंदी में क्यों लिखी या अवधी भाषा में क्यों लिखी? वे तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, तो वे संस्कृत भाषा में लिख देते, ऐसा उनका मत है। जब उनको उत्तर दिया जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी जन जन तक राम कथा को पहुंचाने के लिए जन की भाषा में राम कथा की रचना करते हैं, यदि उन्होंने संस्कृत भाषा में रचना की होती तो जन तक मानो यह राम कथा नहीं पहुंच पाती। और वैसे भी वाल्मीकि की राम कथा तो संस्कृत में थी ही, फिर संस्कृत में एक और राम कथा रचने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए जन जन तक राम कथा को पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने हिंदी में या जन भाषा में या अवधि में राम कथा की रचना की। यह भी उत्तर दिया जाता है। उत्तर के संदर्भ में एक और प्रश्न किया जाता है, यदि गोस्वामी जी हिंदी में ही या अवधि भाषा में ही या जन भाषा में ही राम कथा पहुंचाना चाहते थे जन जन के पास, तो उनको ऐसा करना था कि जो वाल्मीकि की राम कथा है उसका अनुवाद उन्होंने कर दिया होता जन भाषा में, अवधि में उन्हें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना था, वाल्मीकि रामायण में जो बात है बस उसी का अनुवाद कर देना था। वे तो सुकवि थे और अपनी सुंदर काव्यमयी भाषा में वे वाल्मीकि की रामायण का अनुवाद प्रस्तुत कर देते। तो यह जो उन पर टीका टिप्पणी की जाती है कि उनकी रामकथा प्रामाणिक नहीं है, वह भी टिप्पणी नहीं होती और जन भाषा में भी रामकथा का प्रचार हो जाता है। ये दोनों बातें हो जाती, बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है और ठीक भी लगती है कि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा का अनुवाद कर दिया होता वाल्मीकि की जन भाषा में, तो जन भाषा में राम कथा लिखने का उनका उद्देश्य भी पूरा हो जाता और साथ ही साथ वह प्रामाणिकता भी उनकी राम कथा में बनी रहती जो प्रामाणिकता वाल्मीकि की राम कथा की है। सुनने में बात ठीक लगती है, पर तुलसी ने ऐसा क्यों नहीं किया? यह जब विचार करते हैं तब ऐसा लगता है कि तुलसी समाज को कुछ देना चाहते थे, वे कुछ नया देना चाहते थे, ऐसा नया देना चाहते थे जो हमें वाल्मीकि की राम कथा में प्राप्त नहीं होता। तो वह क्या नया है, उनकी वह विशिष्ट देन कौन सी है या तुलसी की राम कथा का वैशिष्ट्य क्या है, इसको हम इन चार दिनों में देखने की चेष्टा करेंगे। तो यदि आप मुझसे पूछे कि यह वैशिष्ट्य क्या है, तो मैं यह कहूंगा कि किसी भी वस्तु को देखने के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक दृष्टिकोण है इतिहास का और दूसरा दृष्टिकोण है भाव का। ये दो दृष्टिकोण आपको प्रत्येक प्रसंग में प्राप्त होते हैं, इसको कहने की एक है इतिहास दृष्टि और दूसरी है भाव दृष्टि। इतिहास दृष्टि में बुद्धि की प्रधानता होती है, वहां पर विचार प्रधान होता है, और जो भाव दृष्टि है वहां पर भावना की प्रधानता होती है, हृदय की प्रधानता होती है। ये दो दृष्टियां हैं जिनके सहारे हम किसी वस्तु को देखा करते हैं और किसी वस्तु की मापतौल भी करते हैं। अब यह जो इतिहास दृष्टि है वह बुद्धि परक तो है, उसमें विचार की प्रधानता है और ऐसा कह सकते हैं कि उसमें एक प्रकार की प्रामाणिकता रहती है, क्योंकि जो इतिहास परक दृष्टि है, बुद्धि परक दृष्टि है, उसमें विचार होता है, ऊहापोह होता है, और जो बुद्धि में ठहरता नहीं है उसको हम त्याग देते हैं, और जो विचार में तर्कणा के निकष पर कस करके ठहर जाता है उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए इतिहास की दृष्टि में प्रामाणिकता तो अवश्य है, पर एक बात आप अवश्य स्वीकार कीजिएगा कि बुद्धि भले ही हमें प्रामाणिकता देती हो परंतु वह हमें जीवन में संतोष नहीं दे पाती। जीवन में जिस संतुष्टि का हम अनुभव करते हैं, जिस सार्थकता का अनुभव अपने जीवन में किया करते हैं, वह सार्थकता का बोध बुद्धि से नहीं उत्पन्न होता, वह तो हृदय से उत्पन्न होता है। और आप इसीलिए देखेंगे कि भले ही कितना भी वह गूढ़ विचारक हो, अपने विचार के सहारे कितने भी प्रमाण पुष्ट तथ्यों को वह प्रस्तुत कर दे, परंतु उसके जीवन में सार्थकता तो केवल भाव के द्वारा ही आती है। बुद्धि कभी हमें सार्थकता नहीं देती। हम इतना कह सकते हैं कि हम बुद्धि के सहारे भिन्न भिन्न प्रकार से गवेषणाएं कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, छानबीन कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। हम रिसर्च के सहारे यह भी जानने का प्रयास कर सकते हैं कि जिस समय प्रभु राम वन को गए तो किस रास्ते से गए। हम तरह तरह से कई प्रकार के संकलन भी कर सकते हैं, तथ्यों को संग्रहित भी कर सकते हैं और एक नक्शा खींच सकते हैं कि प्रभु जिस समय अयोध्या छोड़ करके वन के लिए गए तो उनका मार्ग क्या था। यह विवेचन हमारी बुद्धि को संतोष दे सकता हो, परंतु भाव की दृष्टि से उसकी क्या सार्थकता है कि श्री राम आज से लगभग 7000 वर्ष पूर्व इस रास्ते से दंडकारण्य गए। यदि हमने बुद्धि की दृष्टि से उसे जान लिया तो क्या सार्थकता हुई। आप कह सकते हैं कि मैंने एक बहुत अच्छा शोध पत्र तैयार किया है, केवल एक प्रकार का जिसको हम बुद्धि को एक तोष दिया करते हैं, संतुष्टि देते हैं, ऐसा भले हो सकता है परंतु वह हमारे जीवन को सार्थक नहीं बना पाता। पर मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसमें भावना प्रधान है, वह व्यक्ति भाव के सहारे वस्तुओं का आकलन करता है और वह यह मान लेता है कि जब प्रभु वन के लिए गए, दंडकारण्य के लिए गए, तो बस वे यहां पर इस रायपुर की सड़क से ही होते हुए गए और मेरे घर के सामने से जो रास्ता जाता है उस पर से प्रभु के चरण पड़े हैं। और यदि उसका भाव तीव्र होता है, उस भाव के सहारे उसकी अनुभूति भी सही हो जाती है। इसका मतलब यह है कि क्या केवल बुद्धि से अनुभूत तथ्य ही सत्य है और भाव से अनुभूत तथ्य सत्य नहीं है। क्या हमारा जीवन केवल बुद्धि पर आश्रित है, भाव पर आश्रित नहीं है? या इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि क्या हमारा जितना सारा जीवन है वह सारा जीवन हम विज्ञान में ही जीते हैं? क्या साहित्य का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं है? यदि हम बुद्धि परक बात कहें तो विज्ञान का क्षेत्र आता है, यदि हम भाव परक बात कहें तो साहित्य आता है। साहित्य में भावना की प्रधानता होती है। तो क्या मनुष्य केवल विज्ञान से संतुष्ट हो जाता है? साहित्य का उसके जीवन में कोई मूल्य है ही नहीं? हम कहेंगे इस प्रश्न के उत्तर में कि मनुष्य भले ही विज्ञान के युग में सांसें ले रहा है परंतु वह तो साहित्य में ही सार्थकता प्राप्त करता है। यदि हमारे जीवन को किसी ने शांति प्रदान की हो, किसी ने हमारे जीवन को सार्थकता दी हो, तो वह विज्ञान नहीं है, वह तो साहित्य है। हम साहित्य के माध्यम से शांति प्राप्त करते हैं, विज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि में अशांति उत्पन्न होती है और इसके लिए हमें कोई प्रमाण ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति उसका प्रमाण है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या मनुष्य केवल विज्ञान से ही अपने को सार्थक अनुभव करता है? साहित्य उसके जीवन में क्या सार्थकता की अनुभूति प्रस्तुत नहीं करता? बल्कि हम यही कहते हैं कि साहित्य के द्वारा जीवन में वह अधिक सार्थकता की अनुभूति करता है। जैसे आज तो विज्ञान ने बता दिया, अरे तुम चंद्रमा का इतना सुंदर वर्णन करते हो, ऐ साहित्यिक, अरे हमने तो जाकर के देख लिया, हमने तो चंद्रमा का चित्र भी उतार लिया, अरे वह तो बड़ा उबड़ खाबड़ है, उसमें कोई मोहकता नहीं है, उसमें किसी प्रकार का सौंदर्य नहीं है। विज्ञान डंके की चोट पर भले यह बात कहे, जो बात सत्य भी है, जो चित्र हम देखते हैं, छाया चित्र चंद्रमा के देखते हैं, जो वहां पर ये यंत्र ले आए हैं खींच करके, तो ऐसा लगता है कि उस चंद्रमा में तो कोई मोहकता नहीं है। परंतु क्या विज्ञान की इस बात को सुनकर के साहित्य ने जिस चंद्रमा का वर्णन किया है, तो उस वर्णन से आनंद लेने से क्या हम वंचित रह जाते हैं कि साहित्य में जिस चंद्रमा का वर्णन है, उस वर्णन की अनुभूति क्या हमें नहीं होती? यह प्रश्न है। प्रश्न यह है और इसका उत्तर भी यही है कि भले ही विज्ञान ने कहा हो चंद्रमा सुंदर नहीं है, परंतु फिर भी जब हम साहित्य में चंद्रमा का वर्णन पढ़ते हैं तो सौंदर्य की अनुभूति होती है, हम उसकी सार्थकता का अनुभव अपने जीवन में करते हैं। जैसे एक मां अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, अब एक वैज्ञानिक आकर के कहता है कि अरे तुम प्यार करती हो इस लड़के को, यह लड़का दिखने में ऐसा दिखाई देता है पर वस्तुतः तुम जानती हो कि यह लड़का क्या है। देखो उसने एक एक्सरे के द्वारा लड़के का चित्र ले लिया, अब एक्सरे में तो हड्डियां दिखाई देती हैं, और जाकर के उसने कहा मां से कि देखो यह तुम्हारे लड़के का चित्र है, तो क्या मां अपने लड़के को प्यार करने बंद कर देगी कि उसने देख लिया विज्ञान के द्वारा उसके लड़के का खींचा गया चित्र, हाड़ मांस का चित्र, तो क्या उससे वह अपने लड़के को प्यार करना बंद कर देगी? ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए हमने कहा कि यह जो इतिहास दृष्टि है, भले ही मनुष्य को विवेचन के रास्ते ले जाकर के कुछ दूर तक ले जाती है, परंतु उसकी अपनी एक सीमा है, वह उसके उस पार नहीं जा पाती, और उस पार यदि जाना है तब तो भाव का सहारा लेना पड़ता है, और यह भाव ही हमें आगे ले जाता है। जैसे यूं कह ले, यह इतिहास क्या है? इतिहास, ऐसा वह था, उसका मतलब होता है ऐसा वह था। इसका मतलब कि यह जो इतिहास है वह अतीत की बातों को हमारे समक्ष रखता है, कहता है कि ऐसा वह था। मानो हम शव की चीरफाड़ किया करते हैं इतिहास के सहारे, जो बात बीत चुकी है, अतीत हो चुकी है, उसको हम इतिहास कहते हैं। अब यदि हम इतिहास की दृष्टि से श्री राम की ओर देखें तब क्या हमें कहना पड़ेगा? तब तो यह इतिहास की दृष्टि दो प्रकार के व्यवधान हमारे समक्ष खड़ा कर देगी। एक व्यवधान को कहते हैं देश का व्यवधान, और दूसरा व्यवधान है काल का व्यवधान। इसका मतलब क्या कि यदि हमने श्री राम की ओर इतिहास दृष्टि से देखा तो कहना पड़ेगा कि श्री राम का जन्म एक काल में हुआ था, त्रेता युग में हुआ था, उनका जन्म एक देश में हुआ था, अयोध्या में हुआ था। और जिस व्यक्ति का जन्म काल में और देश में होता है, यह तो ध्रुव सत्य है कि देश और काल में उसकी मृत्यु भी होती है। तो यदि हमने श्री राम को केवल इतिहास की दृष्टि से देखा तो जैसे उनके जन्म को ही स्वीकार करते हैं, वैसे ही उनकी मृत्यु को भी स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास की यह बाध्यता है, जिस बाध्यता को इतिहास स्वयं तोड़ नहीं सकता है। जैसे हम यदि श्री कृष्ण की ओर देखें एक इतिहास की दृष्टि से, तो यही मानना पड़ेगा कि श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था, यह काल की बाध्यता है। और यह भी मानना पड़ेगा कि उनका जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था, यह देश की बाध्यता है। अब इतिहास इन दोनों सीमाओं को तोड़ नहीं सकता, पर भाव दृष्टि की विशेषता क्या है? भाव दृष्टि की विशेषता यह है कि वह इन दोनों तंग दायरों को ढहा देती है, देश के दायरे को और उसी प्रकार काल के दायरे को। जब हम भाव दृष्टि से श्री राम को देखते हैं तो भले ही हम यह तो मानते हैं कि इतिहास में उनका जन्म हुआ है, पर हम उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते, या आप देखेंगे क्योंकि वे हमारे लिए अपने हो गए हैं, बिल्कुल इष्ट हो गए हैं, ईश्वर हो गए हैं। या इसको यूं कह सकते हैं कि इतिहास की दृष्टि से यदि हम किसी पुरुष विशेष को देखें तो वह मनुष्य मात्र होता है, पर भाव की दृष्टि से देखें वह शाश्वत हो जाता है। इतिहास की दृष्टि से देखें तो वह क्षणभंगुर है, कल उसने जन्म लिया और आने वाले कल में उसकी मृत्यु भी हो जाएगी। पर जब हम भाव दृष्टि से देखते हैं तो भले ही हम कहें कि इतिहास में उनका जन्म हुआ है पर उनकी मृत्यु नहीं हुई। इस दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम की ओर देखा है, तभी तो आप देखेंगे कि उन्होंने श्री राम का जन्म तो स्वीकार किया है। किस रूप में किया है? जन्म के रूप में नहीं, प्राकट्य के रूप में, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, जहां पर भी कहेंगे जग निवास प्रभु प्रकटे अखिल लोक विश्राम। मानो तुलसी ने भावदृष्टि से श्री राम को देखा, श्री राम उसमें प्रकट होते हैं पर उनकी मृत्यु नहीं होती। इसीलिए मृत्यु का वर्ण आप रामचरितमानस में नहीं पाइएगा। वाल्मीकि की राम कथा में यह भी वर्णन है कि कैसे श्री राम अपने लोक में गमन करते हैं, स्वलोक चले जाते हैं, इसका वर्णन है। पर तुलसी ने अपनी राम कथा में इसका वर्णन नहीं किया, इसलिए नहीं किया कि जैसा मैंने आपके समक्ष कहा कि वे भाव दृष्टि श्री राम देखें। अब यह बात उपस्थित हुई है तो हम कहना पड़ता है कि तुलसी श्री राम को देखते हैं भाव दृष्टि से, अब देखते हैं महर्षि वाल्मीकि श्री राम को देखते हैं इतिहास की दृष्टि से। अब जब हम तुलसी के राम इस विषय पर चर्चा करते हैं तो यह एक तुलनात्मक थोड़ा सा हमें विचार करना पड़ेगा, वाल्मीकि राम और तुलसी के राम। तो वाल्मीकि के राम कैसे हैं और तुलसी ने अपने राम को किस प्रकार से चित्रित किया, यह आपके समक्ष हमें तो रखना पड़ेगा। परंतु इस चर्चा में आपको कहीं लगे कि मैं वाल्मीकि को बकर रहा हूं, तुलसी को बकर रहा हूं और महर्षि वाल्मीकि को छुआ कर रहा हूं, तो आप इस भूल धारणा को मत पालिएगा, क्योंकि मेरी उतनी ही श्रद्धा महर्षि वाल्मीकि के चरणों में है जितनी श्रद्धा गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में है। इस तुलना के माध्यम से मैं महर्षि वाल्मीकि को छोटा नहीं कर रहा हूं, बल्कि यदि आप पूछें तो मैं अपने हृदय की अधिक श्रद्धा महर्षि वाल्मीकि के चरणों में निवेदित करता हूं, क्योंकि वे राम कथा के आदि गायक हैं। यदि वे ना हुए होते तो हमें राम कथा ना मिली होती, यदि वाल्मीकि ने राम कथा का गायन न किया होता तो बाद में आने वाले जितने भी सुधीजन थे, जितने भी कविजन थे, मुनि थे, संत थे, महात्मा थे, ऋषि थे, वे राम कथा का गायन नहीं कर पाते। यह तो वाल्मीकि की राम कथा है जिसके आधार पर सबने इस राम कथा का गायन किया है। इसलिए यदि आप पूछे तो हृदय की अधिक श्रद्धा उस आदि गायक महर्षि वाल्मीकि के चरणों में मैं निवेदित करता हूं। पर तुलना की दृष्टि से बात को समझने के लिए यह एक तुलनात्मक थोड़ा सा विचार आपके समक्ष मैं करूंगा। बल्कि एक तो परंपरा यह मानती है कि वाल्मीकि ही तुलसी के रूप में कलिकाल में उत्पन्न होते हैं। आप लोग पढ़ते हैं नाभादास जी एक बहुत प्रसिद्ध वैष्णव संत थे, ये वृंदावन में रहा करते थे, गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे और गोस्वामी तुलसीदास जी पर उनकी इतनी श्रद्धा हो गई कि वे तो कहते थे संसार अपार के पार को सुगम रूप नौकालियो कलिकुटिल जीवन स्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। उनकी यही मान्यता कि महर्षि वाल्मीकि ही तुलसी का रूप लेकर के आए हैं राम कथा को हमारे समक्ष युग प्रयोजनीय बनाकर के रखने के लिए, और इस दृष्टि से वे राम कथा का गायन करते हैं। अब यदि पूछें आप कि अच्छा वाल्मीकि ने जिस राम कथा का प्रणयन किया और तुलसी ने जिस राम कथा का प्रणयन किया तो दोनों में अंतर और थोड़ा समझा करके कहिए। यह तो हमने बात सुन ली कि वाल्मीकि अपने राम को इतिहास की दृष्टि से देखते हैं जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी अपने राम को भाव की दृष्टि से देखते हैं। यह तो बात समझ में आ गई, अब थोड़ा सा और समझा दीजिए। तो समझाने के लिए हम दो ग्रंथों की तुलना करते हैं, एक ग्रंथ है महाभारत और दूसरा ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। अब ये दोनों ग्रंथ महर्षि व्यास के द्वारा लिखे गए हैं। आप जानते हैं कि महाभारत भी वेद व्यास की कृति है और उसी प्रकार भागवत भी वेद व्यास की कृति है। अब एक ही लेखक दो कृतियों को उत्पन्न करता है, दो लेखन कार्य करता है, और आप यह भी पाते हैं कि महाभारत के जो नायक हैं वे भी श्री कृष्ण हैं और श्रीमद् भागवत के जो नायक हैं वे भी श्री कृष्ण हैं। अब यह बड़ी विचित्र बात है, अब एक लेखक जब दो भिन्न भिन्न ग्रंथ लिखता है तो ग्रंथों का विवेचन का जो विषय वस्तु जो होती है तो वह कुछ भिन्न होती है। परंतु महाभारत और भागवत में हम देखते हैं कि एक प्रकार से श्री कृष्ण का ही चित्रण किया गया है, चाहे वह महाभारत हो, भिन्न भिन्न आख्यायिकाएं महाभारत में हैं, परंतु वस्तुतः यदि हम देखें तो वहां पर जो लड़ी के समान पुरोया हुआ कथा सूत्र है वह तो श्री कृष्ण का चरित्र ही है।